फिर अब हम देखते हैं कि सूरत का दूसरा हिस्सा क्या है। सूरत का दूसरा हिस्सा आयत नंबर 6 से लेकर 19 तक है, और इसकी इसका शाने नजूल क्या है आप इसको समझ लेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी आखिरी आयतें जो हैं सूरत अलग की, इनमें क्या बात कही गई। आप देखें, कहते हैं कि दूसरा हिस्सा उस वक्त नाजिल हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में इस्लामी तरीके पर नमाज पढ़नी शुरू की, और अबू जहल ने आपको डरा धमका कर इससे रोकना चाहा। मुफस्सरीन ये कहते हैं कि नबी होने के बाद, कबल इसके कि रसूलुल्लाह इस्लाम का ऐलानिया जो थे वो ऐलानी उसका ऐलान करते या उसको उसकी तबलीग करते, आपने क्या किया, हरम में उस तरीके पर नमाज पढ़नी शुरू कर दी जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया था। अब यही वो चीज थी जिसे कुरैश ने पहली मर्तबा महसूस किया कि आप किसी नए दीन के पैरोकार बन गए हैं, और जब उन्होंने इस चीज को महसूस किया तो हुआ क्या कि इनकी रगे जाहलियत जो थी वो फड़क उठी, और इन्होंने आपको धमकाना शुरू किया। अबू जहल ने भी और दूसरे लोग भी, वो क्या चाहते थे कि आप इस तरीके पर हरम के अंदर इबादत ना करें। कई ऐसी हदीस मिलती हैं जिसमें अबू जहल की और लोगों की जो है बेहूदगी का पता चलता है। अब आप देखिए, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि अबू जहल ने कुरैश के लोगों से पूछा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने जमीन पर अपना मुंह टिकाते हैं? लोगों ने कहा कि हाँ। इसने कहा, लात और उज्जा की कसम, अगर मैंने इनको इस तरह नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो इनकी गर्दन पर पांव रख दूंगा और इनका मुंह जमीन में रगड़ दूंगा। फिर ऐसा हुआ कि हुजूर को नमाज पढ़ते देखकर वो आगे बढ़ा ताकि आपकी गर्दन पर पांव रखे, मगर यकायक लोगों ने देखा कि वो पीछे हट रहा है और अपना मुंह किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है। उससे पूछा गया कि ये तुझे क्या हो गया? उसने कहा, मेरे और उनके दरमियान आग की एक खंदक और एक हौलनाक चीज थी और कुछ पर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे करीब फटकता तो मलाइका उसके चीथड़े उड़ा देते। इस हदीस को मुस्नद अहमद, मुस्लिम, नसाई ने रवायत किया है। फिर एक और हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं कि अबू जहल ने कहा कि अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के पास नमाज पढ़ते देख लिया तो उनकी गर्दन पांव के नीचे दबा दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर पहुंची तो आपने फरमाया, अगर इसने ऐसा किया तो मलाइका अलानिया उसे आ पकड़ेंगे। ये बुखारी की रवायत है। इसके अलावा तिर्मिजी, नसाई ने भी रवायत किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की एक और रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल का उधर से गुजर हुआ तो उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने तुमको इससे मना नहीं किया था और इसने आपको धमकियां देनी शुरू की? जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सख्ती से झिड़क दिया। इस पर इसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम किस बल पर मुझे डराते हो? खुदा की कसम, इस वादी में मेरे हमायती सबसे ज्यादा हैं। इसे भी मुस्नद अहमद, तिर्मिजी, नसाई ने रवायत किया है। फिर आप देखिए कि एक और जो है वो रवायत है, और ये इब्ने हशाम में से मैंने ये सीरत का वाकया लिया है। सीरत इब्ने हशाम कि एक दफा अबू जहल अपने अहले मजलिस से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों की तजलील और बुजुर्गों की तौहीन करके हमारा नाक में इन्होंने दम कर रखा है। अब मैंने अल्लाह से अहद किया है कि जब मैं उसे नमाज में देखूंगा इसका सर एक भारी पत्थर से कुचल दूंगा। फिर तुम ख्वाह बनू अब्द मनाफ से मेरी हिफाजत करो या मुझे बेमददगार छोड़ दो। उसके साथियों ने कहा, हम तुझे बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, तुम जो करना चाहते हो कर गुजरो। चुनाचे जब सुबह हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे दस्तूर नमाज अदा करनी शुरू की तो वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक भारी पत्थर उठाकर आगे बढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में जाने का इंतजार करने लगा। करीब पहुंचा ही था कि फिर पीछे पलटने लगा, इसका रंग उड़ गया और वो बदहवासी की वजह से अपने हाथ से पत्थर भी नीचे ना फेंक सका। इसके दोस्तों ने पूछा, अबुल हकम ये क्या माजरा है? इसके हवास ठिकाने आए तो कहने लगा, क्या बताऊं, एक करीहुल मंजर ऊंट आड़े आ गया था। इस ऊंट जैसी खोपड़ी, इस जैसी गर्दन और इस ऊंट के दांतों जैसे दांत मैंने आज तक नहीं देखे, ये ऊंट तो मुझे निगल लेना चाहता था। फिर इसी तरह आप देखें कि ये जो आपको तकलीफें पहुंचाते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे आपने उनके हक में बददुआ भी की। एक दफा आप खाना काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल और इसके साथी भी वहां बैठे थे। अबू जहल अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम में से कौन है जो फलां शख्स के हां से जिबा शुदा ऊंटनी का जो है बच्चा दान उठा लाए। क्या मतलब? ओजड़ी, जिसमें बच्चा छुपा हुआ होता है, तो ऊंटनी की ओजड़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाए तो इसकी पीठ पर रख दे। उकबा बिन अबी मोईत झट बोल उठा के मैं ये काम करूंगा। चुनाचे वो गया और वो ओजड़ी यानी बच्चा दान उठा लाया। फिर जब आप सजदे में गए तो उसे आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह कहते हैं कि मैं इनके मुकाबले में अपनी कमजोरी की वजह से कुछ भी ना कर सकता था। गोया कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह देख रहे थे, काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मदद कर सकता। ये मंजर देखकर अबू जहल और उसके साथी हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बोझ की वजह से अपना सर भी उठा नहीं सकते थे। इतने में किसी ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को खबर कर दी। वो आई और आपकी गर्दन से बच्चा दानी को उठाकर परे फेंक दिया, ओजड़ी को उठाकर परे फेंका और उन्हें बुरा भला कहने लगी। आपने सजदे से सर उठाया, फिर तीन बार कहा, अल्लाहुम्मा अलैक बिकुरैश, ऐ अल्लाह इन कुरैशियों से तू खुद निमट ले। ये कलमात सुनकर वो लोग सहम गए क्योंकि उन्हें इस बात का खतरा लाहक हो गया था कि आपकी बद्दुआ रंग ला कर रहेगी। फिर आपने इस मजमा के 6 आदमियों के नाम लेकर बद्दुआ दी। उन्हें कहा, या अल्लाह अबू जहल से निमट, उत्बा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, वलीद बिन उमैया, उमैया बिन खल्फ और उत्बा बिन अबी मुईत, इनसे निमट ले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह फरमाते हैं, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सब लोग बदर की लड़ाई में मारे गए और बदर के कुएं में फेंके गए। ये बुखारी की रवायत है। तो आइए इस पसे मंजर में सूरत अल अलक आयत नंबर 6 से लेकर 19 तक समझते हैं। कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, हरगिज नहीं, बेशक इंसान लयतगा सरकशी करता है। अब आप देख लें कि इल्म सिखाया, पैगंबर को नबूवत दी, अब जो मालो दौलत के बुचारी हैं और जो इज्जत और जाह को सब कुछ समझते हैं वो क्या करने लगे, शुक्रगुजार होने की बजाय सरकशी पर उतर आए, हद बंदगी से तजावुज करने लगे। अब यहां पर डांट है, कल्ला हरगिज नहीं, इन्नल इंसाना के बेशक इंसान लयतगा आपे से बाहर हो जाता है, तुगयानी पे उतर आता है। इसमें अबू जहल और उसके बहुत से साथी मक्का के सरदार भी मुराद हैं और इसके अलावा हर दौर का इंसान जब वो नमरूद और फिरौन बन जाता है। अर्राहु स्तगना, इसलिए कि वो अपने आप को बेपरवाह समझता है। अब आप देखें कि इस्तगना, गनी का मतलब होता है अमीर होना और इस अलिफ सीमता के मानी है कि गिना को मांगना, अपने आप को कुछ समझना, बेपरवाह हो जाना, बेनियाज हो जाना। और एक गिना होता है दिल का, एक गिना होता है दौलत का और एक गिना यह कि इंसान किसी की परवाह ही ना करे, अपने आप को इतना कुछ समझे। तो यहां पे बताया जा रहा है कि ये इतना सरकश है कि आपे से बाहर होकर अपने आप को बेपरवाह समझ रहा है, जैसे कोई परवाह ही नहीं, गलत काम करता है और बेपरवाह समझता है। इन्ना इला रब्बिकर रुजा, रुजा जो है ये मस्दर इस्तेमाल हुआ है और बुशरा के वजन पर, बुशरा के वजन पर ये मस्दर है और क्या है, ताकीद के लिए, यकीनन लौटना तेरे रब की तरफ है। इंसान तू क्या समझता है कि तू मरेगा और फिर खत्म हो जाएगा? नहीं, तुझे पता चलेगा तेरी तुगयानी का अंजाम क्या है, तुझे तेरे रब की तरफ लौटना है। अरईता लजी यनहा, भला इसे भी तो देख। अरईता, क्या तूने देखा उसको, अल्लजी वो जो, यनहा रोकता है, तुमने देखा उस शख्स को जो एक बंदे को रोकता है, और ये कौन है जो कि रोक रहा है? अबू जहल है रोकने वाला। अरईत अल्लज़ी यनहा, और जिसको रोका जा रहा है वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अबू जहल है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो रोक रहा है, आपको सता रहा है। तो उसने जब देखा कि नमाज जो है वो आप पढ़ रहे हैं खाना काबा में एक मुख्तलिफ तरीके से, तो उसने आपको नमाज पढ़ते हुए जब देखा तो कहने लगा बारहा मना कर चुका हूं ऐसे ना पढ़ा कर, और आपको झिड़क दिया, और फिर कहने लगा कि मक्का में सबसे बड़ा मजमा मेरे साथ है, और अब आपको नमाज पढ़ते ऐसे देखा तो आपकी गर्दन पर पांव रख दूंगा। और फिर वो सारी हदीसें जो मैंने सुनाई उसको आप अपने जहन में रखें। अबदन, एक बंदा इज़ा सल्ला, जबकि वो नमाज पढ़ता हो, और बंदे से मुराद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान में अल्लाह ने पैगंबर को बंदा कहा, और रसूल अल्लाह को भी कई जगह पर बंदा कहा। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, तो वहां पे भी यानी मेराज का सफर किसी फरिश्ते को नहीं करवाया था, बंदे को, और वो कौन थे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सूरत कहफ में आप पढ़ चुकी आयत पहली, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजला अला अब्दिहिल किताब, बंदे पर किताब नाजिल की है ना। और इस तरह सूरत जिन में आप पढ़ चुकी हैं, व अन्नहु लम्मा क़ामा अब्दुल्लाही यदउहु कादु यकूनूना अलैहि लिबादा, तो यहां पे भी क्या कहा जा रहा है कि अबदन इज़ा सल्ला, कि जब बंदा जो है वो नमाज पढ़ता है। अरईता इन काना अलल हुदा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर वो बंदा राह रास्त पर है? अब यहां पर जो है वो क्या कहा जा रहा है, अल्लाह ताला जो है वो मुखातिब को गौर व फिक्र की दावत देते हैं। मुखातिब से कहते हैं कि जरा देख तो सही, जरा सोच तो सही कि इससे बढ़कर अजीब चीज क्या हो सकती है कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा हो वो हदायत पर, बंदा नमाज पढ़ रहा हो वो हदायत पर, तकवा की तालीम दे रहा हो, अच्छी बातें कर रहा हो, और अमरा भी तकवा या परहेजगारी की तालीम करता हो, अच्छी बातों की वो तालीम देता है। अगर कोई गुमराही करता है, गलत काम करता है, तो उनको मना करता है, हदायत का ये आला नमूना है बंदा, जिसका किरदार इतना खूबसूरत है, इतना बेहतरीन है। और अब क्या है कि एक तरफ बंदे का ये किरदार है, इसको भी तूने देखा, और दूसरी तरफ बंदे का एक और किरदार है। अरईतइन कज़्ज़ब व तवल्ला, और तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक और शख्स है, इन कज़्ज़बा, अगर ये झुटलाता है। अब ये कौन है? अबू जहल। अब एक और नमूना जो है वो पेश किया जा रहा है कि एक तरफ ये काम नेकी का है और दूसरी तरफ झुटलाने वाला है, और अगर ये मना करने वाला शख्स जो है ये हक को झुटलाता है, ये मना करता है ना, पीछे आप पढ़ी चुकी अरईत अल्लज़ी यनहा, तो जिसका ये यनहा का किरदार है, अब ये क्या करता है? इन कज़्ज़बा, हक को झुटलाता है, व तवल्ला, और मुंह मोड़ता है, और क्या करता है? अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और अल्लाह की किताब से जो है वो बच बच कर चलता है। दोनों का किरदार बड़ा मुख्तलिफ है ना। अलम यालम बी अन्नल्लाह यरा, अलम यालम बी अन्नल्लाह यरा, क्या वो नहीं जानता? बिअन्नल्लाहा, के अल्लाह यरा, देखता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, अब यहां पे अल्लाह ताला ने दो किरदार सामने रखे हैं और इंसाफ करने वालों को मुखातिब किया है, और अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसाफ पसंद शख्स से पूछना चाहिए। एक तरफ तो अल्लाह की बंदगी करने वाला है, हदायत और तकवा अख्तियार करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, और दूसरा किरदार है जो कि लोगों को अल्लाह से डरने और बुरे कामों से रोकने की कोशिश करता हो, नमाज से मना करता हो, हक को झुटलाता हो, उसे मुंह मोड़ता हो, तो उससे यानी ऐसा किरदार है, बताओ कि क्या दोनों की रविश यकसा है, एक नेकी का काम करने वाला और एक बुराई का काम करने वाला? क्या जालिम और मजलूम जो है, क्या दोनों का किरदार एक जैसा है? और क्या कहा कि अल्लाह तो दोनों को देख रहा है, सोसाइटी अदल नहीं भी अगर करेगी, सोसाइटी गौर व फिक्र नहीं भी करेगी, अल्लाह तो जालिम को सजा दे कर रहेगा और मजलूम की दाद रसी करके रहेगा। अलम यालम बि अन्नल्लाहा यरा, क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देखता है? बड़ी खूबसूरत यह आयत है, उससे क्या बात पता चलती है कि सोसाइटी में अदल करना चाहिए, घर के अंदर, क्लास के अंदर, माशरे के अंदर, दोस्तों के अंदर। तो जो एक तो अबू जहल का किरदार है रसूल अल्लाह का, ये खास है, लेकिन इसका ये जो एग्जाम्पल है ये अमूमी है, आम है, कि जालिम का हाथ पकड़ना चाहिए और मजलूम जो है उसकी दादरसी करनी चाहिए। ऐसे ना हो कि सोसाइटी के लोग अंधे बहरे बनकर रहें और अदल ना करें और तुग्यानी पर, सरकशी पर उनको रोके ही नहीं। और फिर ये आयत नंबर 14 में भी ये है कि कयामत आकर रहेगी, फिर मैं अदल करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा, मालिक यौमिद्दीन अहकमुल हाकिमीन। और आयत 15 में क्या है? कल्ला, हरगिज नहीं। शुरू बात भी आयत 6 में कल्ला था, कल्ला, डांट, धमकी, तंबीह, अब फिर डांट है, लइन लम यंतही, अगर वो बाज ना आया। यंतही और आयत 9 में यनहा, दोनों का रूट क्या है? नून हा या, अगर वो बाज ना आया। अबू जहल, उसके साथी और हर काफिर और मुशरिक का किरदार, हर तागी का किरदार जिसके अंदर तुगयानी पाई जाती है, वो उस दौर का है या आज के दौर का? आज के दौर का। अल्लाह ताला कहते हैं हरगिज नहीं, अगर वो बाज ना आया, लनस्वम बिन्नासिया। अब आप देख लें कि यहां भी ख्वाहिश शफवी है, लनस्वम बिन्नासिया। और ये आयत नंबर 14 में भी ख्वाहिश शफवी है, अलम यालम। तो क्यों है ख्वाहिश शफवी? गौर व फिक्र की दावत है ना। तो तजवीद इसलिए भी सीख लेनी चाहिए कि कुरान जो है तजवीद में ऐसे पढ़ा जाता है कि जहां पे गौर व फिक्र करने की जरूरत होती है, सोचने की, रुकने की, वहां पे फिर वो ऐसे ही अहकाम होते हैं। ठीक है ना, ये है बात। अगर वो बाज ना आया, लनस्फान, सीन फा आयन, इसका रूट है और इसके मानी होते हैं खींचना। खींचने के लिए कुरान में 6 लफ्ज आए हैं और इसका छठा दर्जा है, सफा का छठा दर्जा है कि घोड़े के पेशानी के बालों से पकड़कर खींचना। और आप देखें घोड़े की पेशानी के बालों से पकड़कर जब खींचा जाता है तो पूरी तरह उसको मालिक अपनी गिरफ्त में ले आता है। तो किसी को किसी की पेशानी के बालों से पकड़कर खींचा जाए बड़ी तकलीफ होती है, पीछे से खींचा जाए तब भी तकलीफ होती है, लेकिन पेशानी से जब पकड़कर खींचा जाता है, इसकी दो वजह होती हैं। एक तो ये कि पूरी कुव्वत और ताकत से वो शख्स पूरा घूम जाता है, और दूसरा ये कि सजा देने के लिए, ये बड़ी तकलीफ दे सजा है कि हम उसको पकड़ कर खींचेंगे कहां से? बिन्ना सिया, पेशानी के बालों से। एक तो है ना सफा, घोड़े को पेशानी के बालों से पकड़कर खींचना, दूसरा नासिया आ गया। और कुरान में पेशानी के लिए 3 लफ्ज आए हैं, एक नासिया, एक जबहा और दूसरा जबीन। जबीन तो है पेशानी की एक तरफ, दाई या बाई, और जीम्बा हा है पेशानी का दरमियानी हिस्सा, और नासिया तीसरा दर्जा है। इसके मानी होते हैं पेशानी और इसके बाल, यानी पूरी पेशानी और उसके बाल। तो कहा कि हम इसको जो है इसकी पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटेंगे, और ऐसे घसीटेंगे जैसे घोड़े को घसीटा जाता है, जैसे जानवरों को घसीटा जाता है। नासियतिन काजिबतिन खातिया, नासियतिन ये पेशानी है, पेशानी की सिफत बताई जा रही है, काजिबतिन झूठ बोलने वाली, ये झूठी पेशानी है, उनका उसका नाम ही रख दिया काजिबतिन। खातियातिन खताकार है, खताकार का मतलब क्या है? झूठा, गुनाह करने वाला, तुगयानी करने वाला। फल यदूना दिया, बस वो बुला ले अपनी टोली को। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे नादिया नादिया हु का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और नून दाल या के मानी होते हैं क्या, पुकारना बुलाना, नदी पानी के लिए भी आता है। और जब मुंह के अंदर पानी होता है यानी थोड़ी गीलापन होता है तो ऊंची आवाज में हम पुकारते हैं ना, तो इसी तरह नादिया जो है कलब को कहा जाता है, हम मजलिस लोग जहां सब मिलकर इकट्ठे बैठते हैं, नादिया। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ये अपनी मजलिस के लोगों को बुला ले, क्यों, इसलिए कि अबू जहल ने ये कहा था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, धमकी दी थी कि अगर आप मेरी बात मानेंगे नहीं, अगर आप जो हैं मेरा कहना नहीं मानेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। अबू जहल ने कहा था कि इस बस्ती में इस जगह पे मेरे लोग मेरे हमायती ज्यादा हैं, ऐ मोहम्मद तुम किस बल पर मुझे डराते हो, खुदा की कसम इस वादी में मेरे हमायती सबसे ज्यादा है। ये किसने कहा था, अबू जहल ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह ताला उसकी इस धमकी का जवाब देते हैं, पैगंबरों की हमायत तो अल्लाह ही करता है ना, अल्लाह ही बजाता है ना, हिफाजत भी अल्लाह ही करता है। فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ, तो ये अपनी मजलिस वालों को बुला ले जरा, سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ, हम भी दोजक के जो सिपाही हैं हम उनको बुला लेंगे। तो जबानिया का लफ्ज जो है ये इसका रूट है ज़े बे नून, ज़बन, दोजक के फरिश्तों को भी कहते हैं, इसका वाहिद है ज़बनियतुन। और ज़े बे नून वैसे तो दोजक के फरिश्तों को कहते हैं, दोजक के फरिश्तों के लिए आपने क्या क्या पढ़ा है, या मालिक, मालिक भी पढ़ा है, और हाँ खजन, शाबाश। तो जहन्नुम के जो खजानची हैं खाजिन, वो पूछेंगे अलम यातिकुम बे नजीर, अलम यातिकुम नजीर, के क्या तुम्हारे पास जो है वो डराने वाला नहीं आया था। असल में ज़े बे नून के मानी होते हैं डंग मारना, ज़बानिल इक़रब, बिच्छू का डंग बड़ा मशहूर है उसके लिए लफ्ज। तो ज़बानियतुन, दोज़क के सख्त गिर और तुंद खूफ फरिश्ते, वो ऐसे पकड़ेंगे, वो ऐसे मारेंगे कि जैसे डंग, डंग नहीं काटा जाता, उनका मारना पकड़ना धक्के देना डंग की तरह होगा। अब आप देखें कि जो है वो ज़बानिया के मानी क्या होते हैं, पुलिस के लिए भी बोला जाता है और इसके मानी धक्का देने के भी होते हैं, और बादशाह के जो होते हैं ना, बादशाह के कुछ लोग बादशाह ने रखे हुए होते हैं, जिस पर बादशाह नाराज हो जाए ना, तो वो जो खास बादशाह की पुलिस होती है ना, उसको भी ज़बानियां कहते हैं, कि फिर वो धक्के दे देकर उन लोगों को बादशाह के महल दरबार से निकाल देती है। तो यहाँ पे भी ये क्या कहा कि वो तो अपने हमायतियों को बुलाए और अल्लाह बुलाएगा अपनी पुलिस, और अल्लाह की पुलिस से मुराद यहाँ पे मलाइका अजाब है, आम अल्लाह की पुलिस नहीं, मलाइका नहीं, मलाइका अजाब, फिर अल्लाह उनको बुला लेगा। कल्ला, हरगिज नहीं, ला तुतिहु वस्जुद वक्तरिब, हरगिज इसकी बात न मान, अबू जहल और हर इस किरदार की, इसका कहना न मान, इसकी अतात ना कर, फिर किसकी अतात कर, अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वस्जुद और सजदा कर। एक सजदा तो नमाज है, दूसरा सजदा क्या है कि सारी जिंदगी फिर अल्लाह की अतात की जाए। और इस सिलसिले में जो है वो हमें सही मुस्लिम की रवायत भी मिलती है कि बंदा सबसे ज्यादा अपने रब से उस वक्त करीब होता है जब वो सजदे में होता है ना। तो क्या कर, वस्जुद और सजदा कर, वक्त करीब और इसका कुर्ब हासिल कर। तो क्या बात सामने आई कि सजदों के जरिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। सजदा नमाज क्या है, फर्शी को अर्श से मिला देती है, कि नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है, और सजदे में इंसान जो है सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है। आपको याद है रबिया बिन काब असलमी रसूल अल्लाह के एक सहाबी थे, दीवाना वार आपसे इश्क करते थे, हर वक्त जो थे रसूल अल्लाह के हुजरे के बाहर बैठे रहते कि कोई काम हो तो रसूल अल्लाह मुझे बताएं, और जब आपको वुजू के लिए पानी भी चाहिए होता ना तो ये पानी ला कर देते। तो एक दिन फजर का तहज्जुद का कहते शायद वक्त था, तो रसूल अल्लाह के लिए पानी लाए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, कहा कि रबिया बिन काब मांग क्या मांगता है, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं। अब आप देखें, अब मैं इस हदीस को जब पढ़ती हूं तो मैं अपना जायजा लेती हूं, मुहासबा करती हूं, आप भी अपना करें। कि मैं उनकी जगह होती तो क्या मांगती, आप क्या मांगती, जरा थोड़ी देर के लिए सोचे कि ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप मिल जाए, औलाद नहीं है औलाद मिल जाए, मेरा अपना घर तो होना चाहिए, मैं खूबसूरत बन जाऊं, जेवर, सारे लोग जरा मुझसे प्यार करने लगे ना, बादशाह मिल जाए तो क्या ही बात है, क्या क्या तमन्नाएं होती है ना। आप ठंडे दिल से अपना अपना जायजा लें और फिर हम क्या कहते हैं कि ठहरे ठहरे जरा मशवरा तो कर लो किस चीज में ज्यादा फायदा है ना। अब हजरत रबिया बिन काब असलमी से रसूलल्लाह जो है वो पूछ रहे हैं कि मांग क्या मांगता है, कहते हैं मैंने अर्ज किया कि जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूं। किसी से मशवरा नहीं किया कि अल्लाह के नबी जन्नत चाहिए और जन्नत में आपका साथ चाहिए, आपने पूछा कुछ और भी, मैंने अर्ज किया बस यही कुछ चाहता हूं और कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि और फिर ये है, इतना कुछ है अब मैं बता भी नहीं सकती ना एक ही फोन पर, तो कि आप अमेरिका से आए और कनाडा से तो क्या लेकर आए, और पाकिस्तान से कोई आ रहा हो तो हमारी चीजों की फहरिस्त इतनी तवील होती है कि अगला बंदा शर्मिंदा हो जाता है पूछने वाला, जो ऐसे ही पूछ लेता है, बाद वक्त ऐसे हल्के से पूछ लेते हैं ना कि अच्छा तो आपकी कोई खिदमत हो बाजी, और आप आपस में भी आपकी कोई खिदमत कोई काम, अब वो कहने वाला पछताता है कि क्यों भूल कर पूछ बैठी कि कोई चीज हो तो बताए मैं ला दूं, इसलिए कि अब तो हम तो चुप ही नहीं कर रहे। अगला कहता है फिर मजबूरी से बताता है कि असल में ना मेरी अम्मी अबू भी वहां पे रहते हैं और मेरे बहन भाई भी हैं और मेरी अपनी भी चीजें हैं, तो अच्छा फिर मैं देखूंगी, लेकिन ये कि फिर वो लेकिन आगे वो आए भाई शाएं से काम लेता है। तो जरा जरूर ये ना फहरिस्त बताते हुए जरूर जो है वो ख्याल रखना चाहिए, और पूछने वाला भी अगर वाकई ला सकता है तो पूछे, वरना डरने की कोई जरूरत नहीं, पूछने की कोई जरूरत नहीं किसी को। खैर उन्होंने कहा कि बस यही कुछ चाहता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो कसरत सुजूद को अपने ऊपर लाजिम कर लो और इस तरह इस सिलसिले में मेरी मदद करो कि अगर तुम जन्नत और जन्नत में मेरी रफाकत चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ा करो, कसरत सुजूद, तुम भी मेरे लिए दुआ करो, इस सिलसिले में मेरे लिए मेरी दुआ से मदद करो कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं और तुम भी मेरे लिए कसरत सुजूद से मेरी मदद करो। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। अच्छा इस सिलसिले में एक और हमें जो है वो रवायत मिलती है कि इस सूरत के इख्तिताम पर सज्दा तिलावत करना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज़ समा उनशक्त और सूरत इकरा पढ़ी और फिर इसके बाद जो है वो इस पर सजदा किया। तो इस सूरत के बाद जो है वो सजदा करना चाहिए, और यहाँ पे जो हम सजदा करते हैं तो ये हमें चीज क्या सिखाती है, ये बात बताती है कि सारी जिंदगी अब सजदा करना है, अल्लाह की बंदगी और इबादत करनी है। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका वनतूबु इलैक।